Chapter 6, the liberation of Sarvabhauma Bharacharya.
And Sri Chaitanya Charitamrita ke madhye lila adhyay 6, iska shirshak hai Sarvabhauma Bharacharya ki mukti.
So Sarvabhauma Bharacharya has now met Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was in a swoon, in a trance, samadhi. Samadhi in the temple room, Dhanava Pranams in front of Lord Jagannath, he appeared to be dead.
Sarvabhauma Bhattacharya Sri Chaitanya Mahaprabhu se mile, Sri Chaitanya Mahaprabhu samadhi mein the, aur Jagannath mandir mein aisa pratit hota tha ki Mahaprabhu mrit hain. Pranam ki mudra mein.
Bhattacharya knew the science and he knew how to test sadhus.
Sarvabhauma Bhattacharya ko vigyan malum tha aur unhe pata tha ki sadhu ko kaise pariksha lena hai.
Went before Chaitanya Mahaprabhu with a small swab of cotton.
So when Sri Chaitanya Mahaprabhu ke nikat gaye, ruhi ka ek chhota sa tukda lekar.
And he was able to detect that under the nose of Mahaprabhu, the cotton was moving slightly.
जब उन्होंने उस रूई को नाक के नीचे रखा तो रूई के रेशे हल्के से हिलना शुरू.
So he could understand that Mahaprabhu was still alive and that he was in a deep trance.
तो सातवां भट्टाचार्य समझ चुके कि श्री चैतन्य महाप्रभु जीवित हैं और एक बहुत ही गहरे समाधि में हैं।
He did not know who is this sadhu. Did not know him. He had not heard of him.
तो वे जानते नहीं थे कि साधु कौन है।
Because Mahaprabhu had just come to Jagannath Puri, so he was not famous yet. Later, of course, he became super famous. He was making millions of dotis left and right.
क्योंकि उस समय महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए नहीं थे और इतने प्रसिद्ध नहीं थे. बाद में हम देखते हैं निश्चित रूप से महाप्रभु कितने प्रसिद्ध हुए.
So then he ordered the devotees to bring him to his house. Sarvabhauma Bhattacharya's house is still there, not far from that Ganga pond.
सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने वहां पे उपस्थित भक्तों को कहा कि इनको मेरे घर पे लाइए. उनका घर आज भी है, जगन्नाथ मंदिर से दूर नहीं है.
Mahaprabhu revived and then they began discussions.
तो महाप्रभु फिर वापस भाई चेतना में आए और उसके बाद उनके बीच में चर्चा हुई.
Sarvabhauma Bhattacharya, he was the topmost scholar and philosopher of the time. He was in charge of all of the pandits, everything. He was top pandit.
सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय के सबसे प्रसिद्ध और जाने माने
Please go back to verse 93. Ansan, you can just read it in the Hindi. Verse 93, 94. Okay, read 93 and 94.
भट्टाचार्य ने कहा, हम तो मित्रों के बीच चर्चा कर रहे हैं और शास्त्रों में वर्णित बातों पर विचार कर रहे हैं। आप क्रुद्ध ना हो, मैं तो केवल शास्त्रों के आधार पर ही बोल रहा हूँ। आप इसे अपराध ना माने। श्लोक संख्या 94। श्री चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही महान एवं असाधारण भक्त हैं, किंतु हम उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस कलयुग में कोई अवतार नहीं होने वाला है।
So, Gopinath Acharya, one of the confidential servants of Chaitanya Mahaprabhu and close intimate associates, the eternal associate, he is upset with Bhattacharya because Bhattacharya refuses to acknowledge that Mahaprabhu is an incarnation of Godhead. So Bhattacharya is taking a position, there's no evidence. So then Gopinath Acharya, he's becoming upset because
जो गोपीनाथ आचार्य हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही हुए शाश्वत परिकर हैं, वह यहाँ पर भट्टाचार्य से नाराज हो रहे थे, क्योंकि भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। भट्टाचार्य ने कहा, शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। कह सकते हैं कि पूरे भारत
He was playing the role of Mayavadi under Yoga Maya, Lila Shakti, Lila Shakti. Under that Lila Shakti, he was playing the role of Mayavadi. He was not really a Mayavadi. He was covered by Yoga Maya. Try to understand this point. It's not that Mahabhu actually converted a heart for a Mayavadi. That is not the proper understanding here at all. Not at all.
ये समझना आवश्यक है कि एक लीला बुराई है और सारनाथ भट्टाचार्य ऐसे नहीं है कि वो बहुत ही कट्टर मायावादी थे परंतु योग शक्ति के अंतर्गत वह एक मायावादी का भूमिका निभा रहे थे ये समझना बहुत ही आवश्यक
है सार्वभौम भट्टाचार्य इज एन इटर्नल एसोसिएट ऑफ चैतन्य महाप्रभु वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ हिम बीइंग इटर्नली अ मायावादी फिलोसोफर हार्ड हार्टेड मायावादी फिलोसोफर नो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द इल्यूजन She tried to understand when I'm trying to make this point how Yoga Maya operates in Krishna Lila and Gaura Lila. We see how Yoga Maya operates by causing persons who appear to be non-devotees but are actually eternal associates of the Lord. This is common in the action of Yoga Maya.
सार्वम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर हैं वह बिल्कुल इतना कठोर हृदय वाले मायावादी नहीं थे जो मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि योग माया किस प्रकार से कार्य करती है कृष्ण लीला में और किस प्रकार से कार्य करती है चैतन्य लीला में जब वह एक भक्त को अभक्त के रूप में प्रदर्शित करती है
So we have to remember the Sarvabhauma, but as we hear this section of Chaitanya Charitamrita, we have to remember that we're talking about an eternal associate of Mahaprabhu who is simply play-acting the role of a Mayavadi under Yoga Maya. That is not his true identity. His true identity is eternal associate. He was ordered, I believe he's incarnation of Brihaspati, if I'm not mistaken, isn't it? Yes. So he's incarnation of Brihaspati, and he was ordered to come down to participate in Gaura Lila. So then how could he be a real Mayavadi? The whole thing is a play. Try to understand how, if you get one thing out of this class, try to meditate on how, the understanding of how Yoga Maya operates. A deva is brought down on the order of the Supreme Lord.
Param Purushottam Bhagavan ki agya se, jo Sarvam Bhattacharya hai, ye vastav mein Brihaspati hai. Aur unhi ki agya se Brihaspati is bhumi par avtar lete hai, Chaitanya Leela mein. सार्वम भट्टाचार्य के रूप में तो इस पूरी कक्षा से जाए आप एक पॉइंट ही समझ सके कि योग माया किस प्रकार कार्य करती है इस बात में मनन कीजिए वास्तव में अभक्त नहीं थे परंतु योग माया शक्ति के अंतर्गत बृहस्पति सार्वम भट्टाचार्य के रूप में आए और एक मायावादी की भूमिका निभा रहे
हैं यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द बृहस्पति एज अ गुरु ऑफ इंद्र एज अ गुरु ऑफ इंद्र ही इज अ गुरु ऑफ ऑल द देवस आल्सो ही इज नो स्मॉल पर्सनालिटी नो स्मॉल पर्सनालिटी ही इज Jagat Guru for the heavenly planets. He's a big acharya for heavenly planets.
जो बृहस्पति है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है इंद्र के गुरु हैं और इंद्र के गुरु का अर्थ है कि सभी देवताओं के गुरु हैं तो स्वर्ग लोक में जगत गुरु हैं और एक बहुत बड़े आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं
Rigamuni is another sadhu, Brahman sadhu guru, very famous, but not in the same league as Brihaspati. You understand? Because Rigamuni He sided with Daksha and fought against Lord Shiva's men, and so he had his beard cut off, and then he has to wear, by the order of Lord Shiva, Bhrigu had to wear the beard of a goat. I don't know if he's still wearing it or not, but he had to take the beard of a goat because he was not due to his offenses against Lord Shiva. He's lucky. During that fight, another guru lost his eyes and his ability to cheat. All his teeth were knocked out. He was not permitted to chew. It was a very heavy pastime, all due to Vaishnava Aparad against Lord Shiva. And Sati Aparad, that double Aparad.
जो भृगु मुनि हैं, वे भी इस बृहस्पति की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि हम देखते हैं भृगु मुनि ने दक्ष की तरफ करके भगवान शिव से युद्ध किया था. और भगवान शिव ने उनकी दाढ़ी काट दी थी और बाद में उन्हें बकरी की दाढ़ी लगानी पड़ी तो मुझे नहीं पता कि अभी भी वो दाढ़ी लगी है नहीं परंतु ये बहुत ही मुख्य लीला है जो घटित हुई वैष्णव अपराध के कारण भगवान शिव और सती के प्रति अपराध किया था दक्ष ने.
So Narada Muni was a messenger boy. After he went to Goloka Vrindavan and had the darshan with Krishna in Dwarka. In Goloka, remember that Dwarka is a section of Goloka Vrindavan. And after having that darshan in Dwarka.
Narada Muni ek dut ke roop mein gaye the aur jab Goloka Vrindavan ke andar gaye aur Dwarka mein unhone bhagwan ke darshan kiye. Ye yaad rakhna zaruri hai ki Dwarka hai ye Goloka Vrindavan ka hi ek hissa hai.
At that time, Narada Muni was appointed to be the messenger boy to go to all the devas to tell them the order of the Lord.
Narada Muni, एक दूत के रूप में गए थे. उन्हें आज्ञा मिली थी कि सभी देवताओं के पास जाएं एक दूत के रूप में उनको भगवान की आज्ञा बताने के लिए.
The Lord said, "I want all of you, the demigods, the at least chief." The greatest devotees amongst the demigods.
तो भगवान ने उन सबको आज्ञा दी, खासकर उन्हें जो मुख्य मुख्य देवताएं हैं और महान भक्त हैं.
He said, "I am descending soon in Navadvip Dham."
भगवान ने कहा कि मैं जल्दी ही नवद्वीप धाम में अवतरित हो रहा हूँ.
I want all of you to descend and take birth in different Brahmin families and enter into my Niti Lila as my associates. This was a direct order from Krishna. And Narada Muni was a messenger boy.
मैं चाहता हूँ कि आप सभी देवता भी पृथ्वी पर जाएं, ब्राह्मण परिवारों में जन्म लें और मेरे नित्य लीला में भाग लें. ये भगवान का वो आज्ञा थी जो नारद मुनि ने सबको बताई.
The point is, this is not just a story.
बात ये है कि ये सब कोई काल्पनिक मनोकथाएं नहीं है.
I'm giving you the in-depth background explanation of this lila with Sarvabhu Bhattacharya. But otherwise. Oh, Mahaprabhu perverted the famous Mayavadi, okay. No. That's external. You've got to understand this point. It is not just that Mahaprabhu, being the supreme philosopher, defeated the world's best Mayavadi. It's not so simple. I'm explaining the background, what happened, why his Brihaspati. He's already Vaishnav. But by Lila Shakti, he was ordered, by Krishna Prasad, he was ordered to come down, and he took this role of impersonalist. So that their discussion can be recorded in the Chaitanya Charitamrita for all time.
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम मात्र समझ लें कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय के सबसे महान मायावादी सार्वभौम भट्टाचार्य को परिवर्तित किया एक वैष्णव के रूप में. नहीं, इसके पीछे जो गहरे तथ्य ये है समझने वाली बात कि सार्वभौम भट्टाचार्य वास्तव में एक वैष्णव थे और योग शक्ति लीला शक्ति के कारण वह देवताओं के लोग से पृथ्वी पर आए और भगवान की लीलाओं में भाग ले रहे हैं. ये जानना बहुत आवश्यक है सही समझ के लिए.
Now read verse 94, please. He said, first he says, "We're just let's chill down, calm down, don't worry. We're just having a little philosophical discussion now. Don't get hot."
जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप शांत हो जाइए, क्रोध ना होइए, क्योंकि हम तो सिर्फ शास्त्रों के आधार पर ही बात कर रहे हैं. तो अगला श्लोक सुनते
हैं. But in 94, now read 94 again.
भगवान विष्णु का एक नाम त्रियुग है क्योंकि कलयुग में उनका अवतार नहीं होता है. ये प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है.
So he's saying Sri Chaitanya Prabhu was certainly a great personality, but he can't be incarnation of Godhead because the Shastra says there's only three incarnations in the age of Kali.
सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से बहुत ही महान व्यक्ति हैं. परंतु वह विष्णु नहीं हो सकते क्योंकि शास्त्रों में तो बताया गया है कि विष्णु का एक नाम है त्रियुग कि उनका कलयुग में अवतार होता ही नहीं है.
This was not due to Sarvabhauma Acharya was right. There are only three incarnations mentioned in Kali Yuga, but you have to go deeper into the Shastra. So it's not that Sarvabhauma Acharya was wrong. He had a valid point, but considering that he was such a big scholar, he should have known that there was more to the Shastra that give evidence of the covered incarnation. That was the defect. He, in spite of being such a huge scholar, he was unaware of the evidence of the covered incarnation, which is Mahaprabhu is coming as a covered incarnation. But the Shastra does say three, so he wasn't wrong.
तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का नाम एक त्रियुग है, वह गलत नहीं है. ये बात प्रमाणित है. परंतु क्योंकि वे इतने महान दार्शनिक थे तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे इसके मर्म को भी समझे। त्रियुग का अर्थ है कि तीनों युग में तो अवतार लेते हैं परंतु कलयुग में वे छंद अवतार के रूप में अवतार लेते हैं।
So I'm repeating here because this is essential point to understand this pastime. So I'm repeating actually in this background of this lila here. Otherwise, it will not be possible to understand what was the role of Sarvabhauma Bhattacharya.
मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। नहीं तो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो हिस्सा है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम उसको समझ नहीं पाएंगे।
Read 95 again, please.
श्लोक संख्या 95। ये सुनकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता मानते हैं, द्वापर युगों में दिखाई पड़ते हैं किंतु कलयुग में भगवान वेश बदल कर प्रकट होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं को संरक्षण प्रदान नहीं करते, जो कि कलयुग में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, जबकि अन्य तीन युगों में वे प्रत्यक्ष जाने जाते हैं, अतएव उनका नाम त्रियुग है।
Now we'll go on to 96, but I'll chant by myself. Naya Shunya Acharya Kahi Duki Hanumane Shastrikya Kalina Tumi Kara Abhimane. Read the translation.
ये सुनकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता मानते हैं।
So Gopinath Acharya, being empowered by Mahaprabhu, he's very bold. He's just cutting Bhattacharya down to science. What is this nonsense? You're supposed to know the Shastra and you do not know. You consider yourself the knower of all the Shastra, but you don't know this important point of explanation of Triyuga, you see. So he's chastising him. Hari Hari!
So Gopinath Acharya here is Sarvam Bhattacharya ko daant laga rahe hain. Mahaprabhu se shakti prapt karke Gopinath Acharya बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि आप अपने आप को वैदिक शास्त्र का ज्ञाता मानते हैं, तो आपको त्रियुग का जो तात्पर्य है ये पता होना चाहिए।
97 भगवत परत द्वि शास्त्र ना प्रदान से द्वि ग्रंथ वाक्य नहि अवदान। Translation:
श्रीमद् भागवतम तथा महाभारत दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र हैं, किंतु आपने इनके कथनों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
So Gopinath Acharya is no fool. He's bringing now the shastric evidence that was omitted by the great scholar Sarvabhauma. Now he's bringing the evidence that was omitted.
Gopinath Acharya यहाँ कोई मूर्ख नहीं है। ऐसा प्रश्न किए जाने पर वे तुरंत ही शास्त्रों में से प्रमाण निकालकर सार्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं।
98 साक्षात अवतार तुम्हें कहा कलिते नहीं विष्णु रा प्रचार।
श्रीमद् भागवतम तथा महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में भगवान विष्णु का प्राकट्य या अवतार ही नहीं होता।
So now Gopinath Acharya is pointing out Sarvabhauma Bhattacharya's ignorance of Srimad Bhagavatam. I believe because it's the 11th canto, is it not, where Mahaprabhu is described as the incarnation and his mission and what he will do, everything. 11th canto, so Sarvabhauma Acharya is apparently ignorant of the Srimad Bhagavatam because he wasn't studying Srimad Bhagavatam, that's the point. He was studying the Vedanta. And as far as he was concerned, the Srimad Bhagavatam, he's not recognizing it as the cream of Vedanta.
तो गोपीनाथ आचार्य यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य की श्रीमद् भागवतम के विषय में अज्ञानता की ओर अंकित कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का बारे में श्लोक बताया गया है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, हालांकि श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, वेदांत भी पढ़ते थे, परंतु श्रीमद् भागवतम को सर्वोच्च शास्त्र के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे।
Problem with Vedantists is they ignore Srimad Bhagavatam, but if they read it, they can't understand it because the only way you can understand Srimad Bhagavatam is if you hear from a pure devotee of the Lord, from a Braja devotee. There's no other way you can understand Srimad Bhagavatam.
Vedanta is जो है उनके साथ समस्या ये है कि वे श्रीमद् भागवतम के बारे में उनको इसको नहीं पढ़ते, और अगर वे पढ़ते भी हैं तो कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को समझने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है किसी शुद्ध भक्त के मुख से उसको श्रवण करना।
Today is shloka.
तो आज का श्लोक जो बोर्ड पर लिखा हुआ है,
कलयुगे निदवतार न करे भगवान अतएवा त्रियुग करे कहे तरनाम। Everybody.
कलयुगे
Yes. The meter is people are jumping ahead. Just watch my hand closely. Say, do we? No. Kali Yuga Lila Avatarana.
In Kali Yuga. That's why it's called, that's why it's known as Tri Yuga.
कलयुग के अंदर कोई लीला अवतार नहीं होता, इसलिए वे त्रियुग कहलाते हैं। और यही परंपरा हम आज के समाज में भी देखते हैं, जहां महाप्रभु के भक्त जो वैष्णव हैं, बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं मायावादी, उनको पराजित करते हैं।
So Chaitanya Mahaprabhu is not in the same category as Leela avatars. This point, we have to download this point. It's a very important point. He's not in the same category as Leela avatars.
Shri Chaitanya Mahaprabhu, Leela avatar ki shredi mein nahi aate. Is baat ko hamein hridaye ke andar utar lena chahiye.
So who are Leela avatars?
Leela avatar kaun kaun se hote hain?
Who are Leela avatars as distinct from Mahaprabhu? So who are? Name a Leela avatar. Lord Ramachandra, yes. Haribol.
Haribol.
Huh? Lord Shingadev, yes. Haribol. Who else? Parashuram. Yes, he's empowered incarnation. I think he's Saktivesh. Parashuram is Saktivesh, isn't he? He's counted as Leela Avatar. There's portions of primary portions and portions and portions of plenary portions, you know. Then there's who else? Braha. Brahadev. So these are the Leela Avatars. They're incarnations of Lord Vishnu. They're emanating from Lord Vishnu, although they're full incarnations. They're plenary portions, they're referred to as, but plenary means full. So they're not, although they're not exactly the same as Krishna, yet they're endowed with his full potency.
Jaise yahan pe naam hai, Bhagwan Ramchandra, Narasingh Dev, Vaman Dev, Purna Matsyata, ye sab Leela Avatar ki shredi mein aate hain. Aur Leela Avatar apne aap mein poorn hote hain. हालांकि वह उनको कृष्ण के बिल्कुल समान नहीं कह सकते, परंतु उनके अंदर सारी शक्तियां होती हैं।
Okay, did you start the purport yet or no? We start the purport, read the purport, yes.
तात्पर्य, लीला अवतार का अर्थ है भगवान का अवतार जो बिना किसी विशेष प्रयास के नाना प्रकार की लीलाएं करता है। वह एक के बाद एक लीलाएं करते हैं और वह सब दिव्य आनंद से पूर्ण होती हैं, तथा ये लीलाएं परम पुरुष द्वारा पूर्णतया नियंत्रित होती हैं। इन लीलाओं में परम पुरुष सर्वथा स्वतंत्र होते हैं।
Okay, this stop. We have to stop on this point. The Supreme Person is totally independent of all others in these pastimes. This is the distinction between Mahaprabhu and Leela avatars that Prabhupada is making crystal clear here.
तो महाप्रभु और लीला अवतार में जो अंतर है यहाँ पर शिला प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि लीलाओं में परम पुरुष सर्वथा स्वतंत्र होते हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु pointed out, did you read?
श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने इंगित
किया अनलिमिटेड लीला अवतारस
लीला अवतारों की संख्या की गिनती नहीं
We are studying in the Srimad Bhagavatam only some of the principal Leela avatars and you have to remember that there are unlimited universes And in other universes, more incarnations are appearing that we don't hear about in the Bhagavatam. We're only hearing about some of the most important in the Bhagavatam. It's an outline in one sense, abbreviation.
Leela avatar ki jo sankhya hai, unki ginti nahi ki ja sakti. Ye anginat hote hain. Aur Srimad Bhagavatam mein jo hum leela avatar ke bare mein padhte hain, vah kuch mukhya leela avataron ke bare mein hi charcha ki gayi.
And our Bhagavatam, which we're receiving on this planet, is quite abbreviated. On the higher planets, there are Bhagavatams with millions of volumes. Because they have got the brain there. We haven't got the brain capacity of what Prabhupada called puppy brain.
जो पृथ्वी लोक पर श्रीमद् भागवतम है बहुत ही संक्षिप्त में है जो देवताओं के लोक पर श्रीमद् भागवतम होती है वे बहुत ही विस्तार रूप में होती है उसमें कई लाखों वॉल्यूम्स होती हैं क्योंकि उनके पास बुद्धि है इसलिए वो समझ सकते हैं इतने विस्तार से
But scholars like Brihaspati, no problem. I can understand Srimad Bhagavatam. He's a pure Vaishnava.
जो बृहस्पति जैसे वहाँ पर विद्वान हैं और वो वैष्णव है शुद्ध वैष्णव है तो वह समझ सकते हैं
We should never confuse Brihaspati with Bhrigamuni, who is not counted as a pure devotee. That's obvious because he chose the wrong side in the fight with Lord Shiva. He opposed Lord Shiva and he paid, and that was a huge apparata. A pure devotee cannot make an apparata like that. So we cannot count Bhrigo. He's a big, big sadhu, but we cannot count him as a pure devotee. We just can't.
And we should go from Bhrigamuni, who is not a pure devotee. और ब्रिगुमुनि ने भगवान शिव के विरुद्ध युद्ध करके अपराध किया था हालांकि वह बहुत महान साधु है परंतु शुद्ध भक्त नहीं है
Next read the Lord told Sanatana I shall explain the chief lila so we're studying only the chief lila avatars in Mahaprabhu's own admission we're studying only the chief lila avatars
महाप्रभु ने सनातन से कहा लीला अवतार कृष्णेरा ना याये गड़न प्रधान करिया कहे देखने दर्शन मत्सरे कुर्मा रघुनाथ नरसिंह वामन वारा आदि लेखा या नायाय गणन इस तरह उन्होंने भगवान के अवतारों की गणना की गई जिनमें मत्स्य कुर्म भगवान रामचंद्र नरसिंह देव वामन देव तथा वारा सम्मिलित हैं इस प्रकार असंख्य लीला अवतार हैं और ये सभी अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं उदाहरणार्थ वरा अवतार ने गर्भोदक सागर के गंध से पूरे पृथ्वी ग्रह को बाहर निकाला कूर्मा अवतार समुद्र मंथन के समय प्रधान आधार बने और भगवान नरसिंह देव आदि पुरुष तथा आदि सिंह के रूप में प्रकट हुए लीला अवतारों के ये कुछ अद्भुत तथा असाधारण गुण हैं श्री अरूप
did you get to the Lagu Bhagavatam yet?
श्रील रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत नामक ग्रंथ में निम्नलिखित 25 लीला अवतारों
का वर्णन किया है। Just want to point out that here we have a list of lila avatars that are not much mentioned, if at all, in the Bhagavatam. There are other Puranas where these avatars will be described, but not the Bhagavat Purana. Mostly, I mean, some names we're not familiar with so much.
यहाँ लीला अवतारों की एक सूची दी गई है इनमें से कुछ
they're mentioned in the Bhagavatam but all of these personalities are mentioned
ये भागवतम में भी इनका वर्णन आता है ये है 25 लीला अवतारों के नाम गिनाए हैं ये है चतुसन नारद वराह मत्स्य यज्ञ नर नारायण कपिल दत्तात्रेय हाय शीश या हाय ग्रीव हंस वृष्णिगर्भ ऋषभ पृथु नरसिंह कूर्मा धन्वंतरी मोहिनी वामन परशुराम राघवेंद्र व्यास बलराम कृष्ण बुध तथा कल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख लीला अवतार के रूप में नहीं हुआ है क्योंकि वे प्रच्छन्न अवतार हैं इस कलयुग में लीला अवतार नहीं है अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भगवान का अवतार प्रकट है श्रीमद् भागवतम में इसकी व्याख्या हुई है
So the text 100 Gopinath continues, Prati Yogi Karina Krishna Yuga Avatar Tarka Nishta Hridaya Tumar Nalika Vichar
Gopinath Acharya ne aage kaha, Nishchit Roop se Pratek Yug mein ek avatar hota hai, jo Yug avatar kehlata hai. Kintu aapka hriday Tark ke karan itna kathor ho chuka hai, ki aap in tathyon par vichar nahi kar sakte.
So he's telling Sarvabhaumacharya that because you're hard-hearted, you've edited the Shastra, you've cut out Chaitanya Mahaprabhu, you've not understood the hidden incarnation, even though he's in the 11th canto of the Bhagavatam. So therefore, you're heart is very hard. He is accusing him of this. And then he will continue in the following verses. He will give evidences from Garga. The evidence we will hear in the 101st verse from Garga Muni, who of course was the astrologer and guru for Krishna and Balaram. It's from the 10th canto of the Bhagavatam. This way, Sarvabhauma Bhattacharya's fatal mistake is that he didn't know the Bhagavatam. He knew all the Vedas, but he didn't know the Bhagavatam.
अगले प्यार में गोपीनाथ आचार्य श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं जो कि गर्ग मुनि ने कहा है.
So next week we will hear from Garga Muni from the 10th canto of the Srimad Bhagavatam that in the past your son had three bodies of three different colors according to the age. These colors were white, red and yellow. So yellow incarnation is mentioned, this is the point, in the Bhagavatam, but it's in codes.
So agle saptah hum garg muni se sunenge jo 10th skand mein jinka varnan aata hai ki kis prakar garg muni naam sanskaran karte hue batate hain ki jo krishna ke teen vibhinn rang wale sharir the shvet lal tatha peet to peet varn.
So next week we will study verse 101.
तो अगले सप्ताह हम इस पर चर्चा करेंगे.
Any questions, comments, clarifications?
का कोई प्रश्न या टिप्पणी?
Okay, thank you very much. Jagat Guru Sri Prabhupada.